नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। घड़ी में शाम के 8:30 बज चुके हैं और हम बिल्कुल अपने वादे के अनुसार एक बार फिर हाजिर हैं आपके अपने न्यूज मैगजीन प्रोग्राम स्पोर्ट्स स्कैन में। श्रोताओं, आज के अंक में तमाम खेल खबरों के साथ मैं हूं जया भारती और खेल जगत की इन खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने खेल विशेषज्ञ गिरीश बुबना। गिरीश जी, आपका स्वागत है।
बहुत बहुत धन्यवाद जया आपका।
तो हम तमाम खेल खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय सेना एफटी ने त्रिभुवन सेना फुटबॉल क्लब को 1-0 से शिकस्त दी। 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप में झारखंड हॉकी टीम की दोहरी जीत। भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने 4थी सब जूनियर मुक्केबाजी चैंपियनशिप की तारीखों की घोषणा की और अंडर 22 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। एक 134वें डूरंड कप फुटबॉल टूर्नामेंट में भारतीय सेना एफटी ने त्रिभुवन सेना फुटबॉल क्लब को 1-0 से पराजित कर दिया है। जमशेदपुर के जेआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए ग्रुप सी के मैच में आज पी क्रिस्टोफर कामी के पहले हाफ में किए गए एकमात्र गोल ने भारतीय सेना के लिए निर्णायक रिजल्ट दिया। नेपाल की त्रिभुवन सेना के तीनों मैचों में एक ही अंक रहा, जबकि भारतीय सेना के दो मैचों में 3 अंक हो गए हैं और इस हार के साथ त्रिभुवन सेना की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई और भारतीय सेना की टीम के लिए नॉकआउट की उम्मीद जाग गई।
तो देखिए, इसमें इंडियन आर्मी जो ग्रुप सी में है
जी,
और उनका त्रिभुवन आर्मी से हो रहा था जो नेपाल की है। तो इस बार डूरंड कप 134वां आयोजन है डूरंड कप का, जो जुलाई 23 से शुरू हुई है और अगस्त 23 तक चलेगी। कुल 43 मैच इसमें खेले जाएंगे। तो यह ग्रुप स्टेज में कैसे है कि 24 टीम जो है वो 6 ग्रुप में विभाजित है, जिसमें हर एक ग्रुप में 4 टीम है।
बिल्कुल।
और हर टीम एक दूसरे से खेल रही है, तो एक टीम को 3 मैचेस मिलेंगे ग्रुप स्टेज में और वहां पर जो 6 ग्रुप विनर होंगे वो सीधा क्वालिफाइंग करेंगे क्वार्टर फाइनल्स के लिए। बची जो 2 टीम है, 8 टीम चाहिए क्वार्टर फाइनल्स के लिए। तो वहां पर जो 2 टीम जो बेस्ट सेकंड प्लेस टीम होगी इन 6 ग्रुप्स में से, उनको मौका मिलेगा। तो इस तरह से 8 टीमें जो है क्वार्टर फाइनल्स में होंगी। तो हालांकि अभी आप देखेंगे ग्रुप सी का अगर आप प्रदर्शन देखेंगे तो वहां पर जो आज के मैच हुए हैं उसमें जमशेदपुर एफसी अभी 2 मैच उन्होंने खेला है और दोनों ही जीता है। इस लिहाज से अभी इंडियन आर्मी जिन्होंने आज अपना मैच जीता है, पहला मैच वो हार गए थे वहां और जो जमशेदपुर एफसी से ही हारे थे
जी, तो
इससे पहले वाला, और जमशेदपुर एफसी ने ही त्रिभुवन आर्मी जो नेपाल से उनको 2-3 से हराया था और उसके पहले वो उसके बाद जो है लद्दाख एफसी से वो 1-1 से ड्रॉ खेला था उन्होंने। तो यहाँ पर चांसेस मुझे लगता है कि अभी इंडियन आर्मी को अपना बचा हुआ एक मैच जीतना पड़ेगा, उसके बाद या तो फिर बाद में देखेंगे कि कहीं जमशेदपुर से वो पिछड़ रहे हैं तो टॉप जो 2 जो लास्ट की जो 2 बेस्ट साइड होगी क्या वहां पर आ पाते हैं या नहीं आ पाते हैं। तो इस मुकाबले से इसके बाद आप, मैं और भी श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि इम्फाल, कोकराझार, कोलकाता, शिलोंग, जमशेदपुर, इन सब जगह ये मुकाबले चल रहे हैं और ये बहुत ही पुराना हमारा ये टूर्नामेंट है और आर्मी सपोर्ट करती है। और आप देखेंगे इस बार इसमें त्रिभुवन आर्मी के अलावा मलेशियन आर्म्ड फोर्स भी है
जी।
जहां पर पहले इंडोनेशिया की टीम आनी थी वो नहीं आ पाई, तो उस वजह से उसके बाद मलेशियन आर्म्ड फोर्स को लिया गया है। और आईएसएल की जो टीम्स है, ईस्ट बंगाल, जमशेदपुर एफसी, मोहम्मडन, मोहन बगान, नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड और पंजाब, ये इंडियन सुपर लीग से है। उसके अलावा आई लीग की जो टीम है, शिलोंग लेजोंग, नामधारी, रियल कश्मीर, डायमंड हार्बर। और श्रोताओं को एक बात और भी बताएं कि जो उभरते हुए जो प्लेयर्स हैं जो फुटबॉल खेलना चाहते हैं, इसमें सिर्फ ये प्राइवेट क्लब्स नहीं, यहाँ तक कि जो हमारे आर्म्ड फोर्स है, इंडियन आर्म्ड फोर्स की जो टीम है, चाहे इंडियन आर्म्ड फोर्स हो, इंडियन आर्मी हो, नेवी हो, आईटीबी पुलिस हो और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो, उनकी टीम भी यहाँ पर है। उसके अलावा राज्यों की टीम भी खेल रही है और 2 जो इनवाइटीज है, जो फॉरेन टीम्स है, जिसमें मैंने बताया एक तो त्रिभुवन आर्मी और एक मलेशिया की आर्म्ड फोर्स की टीम, तो वो इसमें शामिल है।
बिल्कुल। काफी अच्छा मंच प्रदान करती है फुटबॉल के लिए, काफी पुराना टूर्नामेंट रहा। इस बीच आपने कुछ टीमों के नाम लिए, हम बता देना चाहेंगे कि डूरंट कप में कल दो मुकाबले खेले गए। ग्रुप बी के मुकाबले में मोहन बगान सुपर जायंट ने बीएसएफ की टीम को 4-0 से पराजित कर दूसरी जीत दर्ज की लगातार। वहीं ग्रुप एफ के मैच में रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब ने एक तरु फुटबॉल क्लब को 2-1 से पराजित किया। और 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप में झारखंड हॉकी टीम ने आज दोहरी जीत हासिल की है। एक तरफ जहां झारखंड पुरुष टीम ने सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली, वहीं दूसरी तरफ झारखंड महिला टीम ने अपने पहले मैच में कर्नाटक को 2-0 से पराजित कर शानदार शुरुआत की। और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं ये रिपोर्ट।
अट्ठाईस जुलाई से 8 अगस्त तक चेन्नई में आयोजित 15वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल मैच में झारखंड ने चंडीगढ़ को 13-0 से जबरदस्त शिकस्त दी। झारखंड टीम की ओर से आज के मैच में टिंटस हेमरोम ने 5 गोल किए, वहीं साबियान किड़ो ने 3, पतरस हसान ने 2 और गंगा टोपनो, अनीश डुंगडुंग और आशीष तानीपूर्ति ने 1-1 गोल किए। साबियान किड़ो को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। हॉकी झारखंड की टीम अपने पहले मैच में पंजाब को 5-2 से और दूसरे मैच में कर्नाटक को 8-0 के बड़े अंतर से पराजित कर चुका है। वहीं 1 अगस्त से 12 अगस्त तक काकीनाडा आंध्र प्रदेश में आयोजित महिलाओं के सब जूनियर चैंपियनशिप में झारखंड टीम ने कर्नाटक को 2-0 से पराजित कर अपने अभियान की शानदार शुरुआत की। अपने पहले मैच में झारखंड टीम की ओर से रोशनी आइंद और सरोज कुमारी ने 1-1 गोल किए। सीता कुमारी को उनके शानदार खेल के लिए बेस्ट प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। झारखंड महिला टीम का दूसरा मैच कल छत्तीसगढ़ के साथ है। शिल्पी की रिपोर्ट के साथ प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
हॉकी में भारत की टीम हमेशा से अच्छा करते रही है और स्पेशली जब हम झारखंड से खिलाड़ियों को देखे जहां हॉकी का नर्सरी कहा जाता है उसे।
बिल्कुल, वो जो हमारा भारत का क्षेत्र है, चाहे झारखंड हो चाहे फिर आप उड़ीसा की बात करें जो ट्राइबल बेल्ट है, तो वहां से ही वो हॉकी नर्सरी है। खैर पंजाब भी है, पंजाब से भी काफी खिलाड़ी आते हैं और अब तो उत्तर प्रदेश से भी खिलाड़ी आ रहे हैं। और इस बार ये जो जूनियर जो टूर्नामेंट हो रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, खास करके पुरुषों के। इस बार भारत जो है जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन कर रहा है, तमिलनाडु इसकी मेजबानी करेगा। चेन्नई और मदुरई में 28 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच मुकाबले खेले जाएंगे और 6 ग्रुप में करीब 24 टीमें, वही हर एक ग्रुप में 4 टीम। भारत पूल बी में जिसमें पाकिस्तान, चिली और स्विट्जरलैंड भी है। तो अभी हमारे वर्तमान जो जूनियर हॉकी टीम के जो कोच है वो हाल ही में रिटायर्ड हुए महान गोलकीपर पीआर श्रीजेस है। तो पीआर श्रीजेस की नजर इन सब मुकाबलों पे होगी, जिससे एक टीम बनाने के लिए आने वाले वर्ल्ड कप के लिए इसी साल उनको एक टीम बनाने के लिए पूरी एक उनको ये जो है काफी सफलता हासिल होगी इसे।
और बात अब क्रिकेट की। बेंगलुरु में आज महारानी महिला क्रिकेट T20 ट्रॉफी मैच में हुबली टाइगर्स ने मैसूर वॉरियर्स को हरा दिया है। सीमित ओवरों और सीमित स्कोर वाले मैच में मैसूर वॉरियर्स तेजस्विनी प्रिया चौहान और रामेश्वरी गायकवाड़ की गेंदबाजी के आगे घुटने टेक दिए। इसकी और अधिक जानकारी के लिए आइए सुनते हैं हमारे संवाददाता की रिपोर्ट।
मैसूरू वॉरियर्स 12.5 ओवर्स खेलकर केवल 34 रन बनाया। हुबली टाइगर्स ने केवल 1 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य हासिल किया। हुबली टाइगर्स के कृषिका रेड्डी ने 15 रन और भाविका रेड्डी ने 18 रन बनाकर टीम को जीत की ओर ले गए। आज का दूसरा मैच शिवमोगा लायनेस और बैंगलोर ब्लास्टर्स के बीच आधा चला। शिवमोगा 6 विकेट के नुकसान पर 78 रन बनाया था जब बारिश की वजह से मैच रोक दिया गया। पॉइंट्स टेबल में अभी हुबली टाइगर्स पहले स्थान पर है और मैंगलोर ड्रैगन्स दूसरे स्थान पर। कल हुबली टाइगर्स और शिवमोगा मैसूरू का सामना करेगा। स्पोर्ट्स कैन के लिए बेंगलुरु से HR सुधींद्र।
ये तो रही लीग की बात और जब हम क्रिकेट की बात कर ही रहे हैं तो हम बता देना चाहेंगे, बताना क्या है भाई, हम ये कह सकते हैं कि जो कल का हमारा टेस्ट मैच रहा इंग्लैंड और भारत का, उसकी जीत का खुमार अभी भी फैंस के दिलों से उतरा नहीं है। लगातार बधाइयां आ रही हैं भारतीय टीम को और शुभमन गिल की अगुवाई में भारतीय टीम जब लगभग 2 महीने पहले इंग्लैंड पहुंची थी तो कुछ प्रमुख सीनियर खिलाड़ियों की गैर मौजूदगी रही, उससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा रही थी या फिर हम कह सकते हैं कि उम्मीद के सिवाय हमारे पास कुछ भी नहीं था। लेकिन फिर भी भारतीय टीम ने उम्मीदों से बढ़कर प्रदर्शन किया, भविष्य के लिए एक बेहतरीन खाका भी पेश किया। एक बार हम पहले मैच का पूरा समअप सुनते हैं।
विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविचंद्रन अश्विन के संन्यास लेने और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के केवल 3 मैच के लिए उपलब्ध रहने के कारण भारतीय टीम से बहुत अधिक उम्मीद नहीं थी, लेकिन टीम परिवर्तन के इस दौर की पहली परीक्षा में सफल रही। दोनों कप्तानों गिल और उनके प्रतिद्वंद्वी बेन स्टोक्स के शब्दों में 45 दिनों की कड़ी टक्कर के बाद 2-2 की बराबरी शायद एक उचित परिणाम है। भारत ने 2 मैच गंवाए, लीड्स में पहला मैच और लॉर्ड्स में 3रा टेस्ट। इस मैच में भी भारत जीत सकता था, लेकिन यही वो सबक है जो युवा खिलाड़ियों को मिला है। भारतीय टीम की सबसे बड़ी विशेषता ये रही कि उसने किसी भी मैच में आखिर तक हार नहीं मानी और 2 मैच में शानदार वापसी की। गिल ने श्रृंखला में 4 शतक की मदद से सर्वाधिक 754 रन बनाकर आगे बढ़कर नेतृत्व किया। गिल ने बल्लेबाजी क्रम में महत्वपूर्ण 4थे नंबर पर खुद को स्थापित करके भारत की कई चिंताओं को भी दूर कर दिया है। तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज श्रृंखला के नायक बनकर उभरे। वो दोनों टीमों की ओर से सभी 5 टेस्ट मैचों में खेलने वाले एकमात्र तेज गेंदबाज रहे। उन्होंने ओवल में श्रृंखला का अंतिम विकेट लिया और 23 विकेट लेकर सर्वाधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने। प्रसिद्ध कृष्णा और आकाशदीप ने उनका अच्छा साथ दिया। रविंद्र जडेजा ने अपने अनुभव का पूरा इस्तेमाल करके श्रृंखला में 516 रन बनाए, जिसमें 1 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। KL राहुल दोनों टीम में सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज रहे। वे श्रृंखला में 2 शतकों सहित 500 से अधिक रन बनाने वाले अन्य भारतीय बल्लेबाज रहे। निचले क्रम में वॉशिंगटन सुंदर का संयमित प्रदर्शन सराहनीय रहा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
टेस्ट मैच हमने सब देखा, कितना रोमांचक रहा। टेस्ट मैच इतना रोमांचक हो सकता था ये उम्मीद तो नहीं थी।
नहीं, हमेशा ही रोमांचक रहा है टेस्ट क्रिकेट। कई बार क्या हो जाता है कि आप घरेलू पिचेस में मैच देखते हैं और वहां पर एक तरफा मुकाबला जाता है, तो वापस टेस्ट मैचेस ने खास करके इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में और कई भारत में भी, तो एक बात उन क्रिकेट प्रेमियों में वापस जगाई है कि टेस्ट क्रिकेट जहां IPL के दौर में या फटाफट क्रिकेट के दौर में, टेस्ट क्रिकेट अभी भी रोमांचक है। जो बात चल रही थी कि क्या 4 दिन का कर देना चाहिए कुछ देशों के लिए, तो कम से कम भारत और इंग्लैंड ने ये तो साबित कर दिया है
जी।
5 मैचेस की श्रृंखला में हर एक मैच, अगर आप ओवल का मैच छोड़ दें जो कि 5वें दिन पहले सत्र में ही खत्म हो गया, उसके पहले चारों मैच पांचवें दिन और पांचवें और आखिरी सत्र में चले। तो एक तरह से एक कल का जो मुकाबला 1 घंटे का, वो एक किसी थ्रिलर की तरह नहीं था, एक फिल्म आप ये कह सकते हैं कि दर्शक जहां बैठे थे वहां से हिले नहीं
जी।
और जो आप बात कह रही थी कुछ हद तक वो सही भी है कि जिस तरह से हम घर पर न्यूजीलैंड के खिलाफ बिल्कुल एक क्लीन स्वीप हुआ, 3-0 से हम हार गए, उसके बाद हम ऑस्ट्रेलिया गए, वहां भी ऑस्ट्रेलिया से बॉर्डर गावस्कर हम 3-1 से हारे। यहां पर सुमल गिल की जो यंग ब्रिगेड टीम थी, वहां पर रोहित शर्मा ने जैसे टेस्ट संन्यास लिया, विराट कोहली ने लिया, आर अश्विन नहीं थे, तो उसके बावजूद भी ये टीम ने दिखाया कि कितनी इनके बीच में तालमेल और कितना अनुभव यहाँ पर। ये एक काफी, जो एक तरह से ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे हम जब गए थे गाबा में जब जीते, उसके बाद से बहुत बड़ी उपलब्धि है भारतीय टीम के लिए।
और ऋषभ पंत और क्रिस वोक्स का हम जब देखेंगे कि चोट लगने के बावजूद भी जब वो मैदान में उतरे तो प्रशंसकों का दिल जीत लिया उन्होंने। और भारतीय मुक्केबाजी महासंघ ने 4थी सब जूनियर अंडर 15 बालक और बालिका राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप की तारीखों की घोषणा कर दी है। चैंपियनशिप का आयोजन 7 से 13 अगस्त तक उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में होगा। प्रतियोगिता में 700 से अधिक मुक्केबाज हिस्सा लेंगे। वहीं थाईलैंड के बैंकॉक में भारतीय मुक्केबाजों ने अंडर 19 और अंडर 22 एशियाई चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। आज अंडर 19 में 7 महिला मुक्केबाजों ने अपने पदक पक्के कर लिए हैं। वहीं अंडर 22 में कल भारतीय मुक्केबाजों ने 6 और पदक पक्के किए थे। अंडर 22 एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप के सेमीफाइनल मुकाबले कल खेले जाएंगे। और चूंकि समय अब और चर्चा की इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए श्रोताओं से हम विदा लेना चाहेंगे। कल इसी समय फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ। गिरीश जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, बातचीत की, इसके लिए धन्यवाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी।